अध्याय 18 मगध राज्य का उत्कर्ष। हर्यकुल महात्मा बुद्ध के समय में बिंबिसार मगध में शासन कर रहा था या कौन और किस वंश का शासक था, इस प्रश्न पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। उस विषय में दो साक्ष्य विशेषता उल्लेखनीय है। पहला, पुराण बिंबिसार को शिशुनाग वंश का शासक बताते हैं। उनके अनुसार शिशुनाग नामक राजा पहले हुआ जिसने एक नवीन वंश की स्थापना की। बिंबिसार उसी के वंश का था और वह बाद को सिंहासनासीन हुआ। दूसरा, शायद बिंबिसार को पहले बताता है और कहता है कि बिंबिसार का शिशुनाग से कोई संबंध नहीं था। बिंबिसार हर्यंक कुल का था और उस कुल के पतन के पश्चात ही शिशुनाग नामक एक व्यक्ति ने अपने नवीन कुल शिशुनाग कुल की स्थापना की। अधिकांश विद्वानों ने दूसरे मत को ही अधिक उपयुक्त माना है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं। पहला, पुराणों के अनुसार अवंती के प्रद्युत वंश का नाश शिशुनाग ने किया था। अवंती का राजा प्रद्युत था, वह बिंबिसार का समकालीन था। पुराणों के अनुसार उसके बाद भी अवंती में पालक, आर्यक, अवंतीवर्धन और विशाखयूप नामक राजा हुए। अतः स्पष्ट है कि बिंबिसार के पश्चात भी अवंती का प्रद्योत वंश चलता रहा। अब यदि हम शिशुनाग को बिंबिसार के पूर्व मान लें तो यह कैसे संभव हो सकता है कि उसने अवंती के प्रद्योत वंश का नाश किया था। दूसरा, वैशाली के सर्वप्रथम विजय बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। महालंकार वत्थु नामक एक पाली ग्रंथ के अनुसार शिशुनाग ने राजगृह को छोड़कर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। अतः निश्चित है कि शिशुनाग को अजातशत्रु के बाद होना चाहिए, इस प्रकार बिंबिसार के पहले नहीं हो सकता। तीसरा, उपयुक्त ग्रंथ महालंकार वत्थु का यह भी कथन है कि जब से शिशुनाग ने राजगृह का परित्याग किया था तब से उत्तरोत्तर उसकी अवनति होती गई और वह फिर कभी भी पनप ना सका। परंतु हम जानते हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजगृह अपनी उन्नति और समृद्धि की पराकाष्ठा पर था। अतः शिशुनाग इन दोनों राजाओं के पूर्व कैसे हो सकता था। चौथा, शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, परंतु यदि वह बिंबिसार के पूर्व का राजा था तो उस समय तक पाटलिपुत्र अस्तित्व ही नहीं था। पाटलिपुत्र की स्थापना तो बिंबिसार के पश्चात उसके वंशज उदयीन ने की थी। अतः यही निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि बिंबिसार शिशुनाग से पूर्व हुआ था और वह शिशुनाग वंश का न था वरन हरियंक वंश का था, जैसा कि बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। बिंबिसार, डॉक्टर भंडारकर का मत है कि बिंबिसार प्रारंभ में एक सेनापति था, परंतु उसने वज्जियों को पराजित करके अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और एक नवीन राजवंश की स्थापना की। परंतु यह मत न्याय संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि महावंश के अनुसार बिंबिसार के पिता ने उसे अपना राज्य दिया था। उस समय बिंबिसार की आयु 15 वर्ष की थी। बिंबिसार के पिता के नाम के विषय में भी बड़ा मतभेद है। पुराण उसका नाम हेमजीत क्षेत्रोजा अथवा क्षेत्रोजा बताते हैं। तिब्बती साक्ष्यों के अनुसार उसका नाम महापदम था। टर्नर आदि विद्वानों के अनुसार उसका नाम भाती अथवा भट्टी था। वैवाहिक संबंध, बिंबिसार एक कुशल राजनीतिज्ञ था। वह तत्कालीन राजनीति परिस्थिति को भली भांति समझता था। साम्राज्य विस्तार के उस युग में मगध के लिए आवश्यक था कि वह अपनी शक्ति को भली भांति संगठित करे। निर्बल मगध किसी भी समय कौशल वश अथवा अवंती की विस्तार कारिणी उग्र नीति का शिकार हो सकता था। अतः बिंबिसार ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण विवाह संबंध किए। पहला, उसने कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से विवाह कर लिया। कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से न केवल कौशल राज्य मगध का मित्र बन गया और इसके साथ ही साथ मगध को 1,00,000 की वार्षिक आय का काशीग्राम भी प्राप्त हुआ, जो कौशल देवी को विवाह के समय उसके पिता ने दिया था। दूसरा, उसने वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री चल्लना के साथ भी विवाह किया और इस प्रकार से परम विख्यात लिच्छवियों की मित्रता प्राप्त की। तीसरा, उसका तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ हुआ। चौथा, महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार के 500 रानियां थी। संभव है कि उसने तत्कालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए हों। इन विवाहों को परिणाम स्वरूप बिंबिसार की स्थिति काफी दृढ़ हो गई थी। साम्राज्य विस्तार, सर्वप्रथम बिंबिसार ने अंग राज्य के ऊपर आक्रमण किया। उसका राजा ब्रह्मदत्त मारा गया और अंग का राज्य मगध राज्य में मिला लिया गया। साम्राज्य स्थापना की ओर यह दूसरा कदम था। पहला कदम विवाह संबंध के द्वारा काशी प्राप्त का था। इन दो प्रदेशों की प्राप्ति से मगध की शक्ति और समृद्धि दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। महावज्ञ के कथनानुसार बिंबिसार के अधीनता में 80,009 ग्राम थे। संभव है कि उसने कुछ अन्य प्रदेश भी जीते हों। बुद्धचर्या से प्रकट होता है कि बिंबिसार के राज्य विस्तार 300 योजन था। बिंबिसार के राजनीतिक प्रभाव का पता इस बात से भी चलता है कि उसकी राज्यसभा में गांधार नरेश पुष्करसारी ने अपना एक दूत भेजा था। मगध की प्राचीन राजधानी कुशाग्रपुर थी, इसे गिरिवज भी कहते। यह नगर उत्तर में स्थित वज्जी संघ के आक्रमणों के कारण सुरक्षित न था। वज्जियों के कारण ही एक बार इस नगर में आग लग गई और यह बहुत कुछ नष्ट हो गया। तब वज्जियों का सामना करने के लिए बिंबिसार ने पुरानी राजधानी के कुछ उत्तर में राजगृह नामक एक दूसरी राजधानी की स्थापना की। व्यंग सांग इसका उल्लेख करता है। यद्यपि फायन के कथनानुसार नए राजगिरी की स्थापना बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने की थी, इस घटना के अनुसार पांडवजियों की शत्रुता का मूलतः निराकरण करने के लिए बिम्बिसार ने उनकी राजकुमारी चेलना से विवाह भी कर लिया। उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। शासन साम्राज्य स्थापना के साथ ही साथ बिम्बिसार ने सुदृढ़ संचालन की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसे सहायता देने के लिए राज्य में छोटे बड़े अनेक पदाधिकारी थे, उनमें उपराजा, मांडलिक राजा, सेनापति, सेना नायक, महामात्र, व्यवहारिक महामात्र और ग्राम भोजक प्रमुख थे। पहला उपराजा संभवतः बिम्बिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक की सहायता से राज्य करता था, इसे हम उपराजा के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा मांडलिक राजा, ये संभवतः राजवंशी और सामंतवंशी थे, इन्हें अनेक भूप्रदेश दे दिए गए थे जहां ये राजाज्ञा से शासन करते थे। तीसरा सेनापति, उस संघर्ष काल में सुसंगठित सेना का कितना महत्व रहा होगा यह सरलता पूर्वक समझा जा सकता है, अतः सेनापति का पद किसी विश्वस्त और अनुभवी व्यक्ति को ही मिलता होगा। चौथा सेनापति महामात्र, ये सेनापति के नीचे सेना के अन्य पदाधिकारी थे। पांचवा व्यवहारिक महामात्र, ये आधुनिक भाषा में न्यायाधीश थे। छठवा ग्राम भोजक, ये गांव के मुखिया होते थे जो गांव में राजकर वसूल करने में योग देते थे। संपूर्ण राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा ही था, तथापि प्रांतों और ग्रामों को अपने स्थानीय शासन में काफी अधिकार प्राप्त था। महावग्र से प्रकट होता है कि बिम्बिसार राज्यसभा में समस्त ग्रामों के प्रतिनिधियों का स्थान प्राप्त था। न्याय व्यवस्था, राज्य की न्याय व्यवस्था कठोर थी। कारावास के अतिरिक्त कोड़े लगाने, लोहे से दागने, जुआ काटने, पसलियां तोड़ने, अंग छेद और मृत्युदंड देने की भी व्यवस्था थी। गलत सलाह देने के अपराध में बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी पदच्युत कर दिया जाता था। राज्य उच्च सेवा करने पर पदाधिकारियों को पुरस्कार भी मिलते थे। विद्या कला, राज्य में विद्या कला को प्रोत्साहन मिलता था। जीव राज्य का प्रमुख वैद्य था, उसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी और आयुर्वेद की कौमार भृत शाखा का विशेषज्ञ था। राजगिरी में भवनों का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने किया था। बिम्बिसार और शासन अवधि, महावंश के अनुसार बिम्बिसार ने 52 वर्ष तक राज्य किया था, परंतु पुराण में उनकी शासन अवधि केवल 28 वर्ष बताई गई है। इस विरोध का समाधान एक प्रकार से हो सकता है। बौद्ध साहित्य बिम्बिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु को बताता है, वह दर्शक का नाम नहीं लेता, परंतु कई पुराणों में दर्शक को बिम्बिसार का उत्तराधिकारी बताया गया है और उसका शासनकाल 24 वर्ष का। भास के स्वप्नवासवदत्ता में भी दर्शक का नाम आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिम्बिसार के अंतिम 24 वर्षों में राज्य का सक्रिय भार दर्शक के ऊपर ही रहा। वह बिम्बिसार के जीवन काल में ही उपराजा के रूप में 24 वर्ष तक राज्य कार्य संभालता रहा। अतः पुराणों ने बिम्बिसार का शासनकाल केवल 28 वर्ष माना है और उसके 24 वर्ष दर्शक के नाम लिख दिए हैं। दोनों का योग 52 वर्ष होता है। बौद्ध साहित्य ने पूरे 52 वर्ष एकमात्र बिम्बिसार के नाम से दिखाए हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत निष्क्रिय होते हुए भी बिम्बिसार ही वास्तविक राजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंहासन के लिए दर्शक और उसके भाई अजातशत्रु में वैमनस्य था। अंत में अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर बला सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात संभवतः उसने बिम्बिसार के कृपा पात्र दर्शक को भी पदच्युत कर दिया। अजातशत्रु बिम्बिसार के अनेक पुत्र थे। हम दर्शक और अजातशत्रु का उल्लेख कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त महावग्य अभय का और थेरगाथा सिलवंत तथा विमल कोडज का उल्लेख करते हैं। दर्शक तथा अंतिम तीन भाइयों ने संभवतः अजातशत्रु के भय से भिक्षु धर्म ग्रहण कर लिया था। अजातशत्रु की माता का क्या नाम था, प्रश्न पर मतभेद है। संयुक्त निकाय से प्रकट होता है कि वह प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी का पुत्र था, परंतु जैन साहित्य उसे वैशाली के राजा चेतक की पुत्री चेलना का पुत्र बताता है। बौद्ध साहित्य का कथन है कि अपने चचेरे भाई देवदत्त के भड़काने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बना लिया था और कारागार में ही अन्न जल के बिना बिम्बिसार की मृत्यु हो गई थी, परंतु इस कुकृत्य से करने के पश्चात अजातशत्रु की आंखें खुली और उसे बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। साम्राज्य विस्तार, कौशल से युद्ध। अजातशत्रु दुर्धर्ष साम्राज्यवादी था। उसने अपने सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य को शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। उसका सर्वप्रथम युद्ध कौशल के साथ हुआ। यह युद्ध बिम्बिसार और कौशल देवी की मृत्यु के पश्चात काशी के प्रश्न पर हुआ था। हम पीछे इसका वर्णन कर चुके हैं। अतंतो गत्वा कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के साथ संधि कर ली, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह उसके साथ कर दिया और काशी ग्राम दहेज के रूप में उसे फिर से दे दिया। वैशाली से युद्ध। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के लक्ष्मियों से हुआ। वैशाली वज्जी संघ का एक शक्तिशाली गणराज्य था। भूतकाल में संघ से मगध शशंकित रहता था। इस संघ से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए ही बिंबिसार ने उसके साथ विवाह संबंध स्थापित किया था। परंतु अजातशत्रु के समय एक नया झगड़ा खड़ा हो गया। जैन साहित्य का कथन है कि बिंबिसार के वैशाली को लक्ष्मी राजकुमारी से दो पुत्र उत्पन्न हुए, हल और बेहल। बिंबिसार ने इन्हें अपना प्रसिद्ध हाथी सेचेनक और अपने एक बहुमूल्य मुक्ता माला उपहार रूप में दिए थे। परंतु राजा होते ही अजातशत्रु ने इस उपहार को वापस मांगा। हल और बेहल ने इन्हें वापस देने से इनकार कर दिया और अपने भाई से अपनी रक्षा के लिए अपने नाना चेतक के पास चले गए। अतः कुपित होकर अजातशत्रु ने चेतक के राज्य वैशाली पर धावा बोल दिया। बौद्ध साहित्य में युद्ध का दूसरा कारण बताया गया है। उसके अनुसार मगध और वज्जी राज्य के बीच गंगा नदी बहती थी। इस नदी पर एक बंदरगाह था और उसी के समीप एक खान थी। पुराने समझौते के अनुसार बंदरगाह और खान के आधे आधे भाग पर दोनों राज्यों का अधिकार था। परंतु बहुत दिनों से वज्जी संघ मगध को इनका उपयोग न करने दे रहा था। अतः अजातशत्रु ने इस झगड़े का निपटारा शस्त्र बल से किया। परंतु वज्जी संघ को पराजित करना कठिन कार्य था। अतः मगध के महामंत्री वत्सकार ने कूटनीति से काम लिया। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर वज्जी संघ में फूट उत्पन्न कर दी। परिणाम यह हुआ कि जब अजातशत्रु ने आक्रमण किया तो लक्ष्मियों ने सम्मिलित और संगठित रूप से उनका सामना न किया और वे पराजित हुए। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्त का कथन है कि लक्ष्मी राज चेतक ने अपनी सहायता के लिए काशी और कौशल के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। डॉक्टर राय चौधरी का अनुमान है कि पूर्वोल्लिखित कौशल युद्ध और या वैशाली युद्ध पृथक पृथक घटनाएं न थी। वास्तव में वे एक ही महायुद्ध के परिणाम थे। अजातशत्रु के समस्त शत्रुओं ने मिलकर उसकी शक्ति को चूर्ण करने की योजना बनाई थी। परंतु उस अजातशत्रु की प्रबल वीरता और वत्सकार की प्रबल कूटनीति के समक्ष शत्रु समुदाय सफल न हो सका। इस विजय के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। काशी प्राप्ति और अंग विजय के पश्चात वैशाली विजय के रूप में मगध ने साम्राज्य स्थापना की और तीसरा कदम उठाया। अब एकमात्र अवंती का राज्य ऐसा था जो मगध का सामना कर सकता था। वस्तुतः अजातशत्रु को शक्तिशाली अवंती राज से भय भी था। मज्जिन निकाय का कथन है कि अवंती राज पर धौत के आक्रमण की आशंका से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। परंतु एक अक्षत्र राज्य राजा की उपाधि के लिए इन दो प्रतियोगियों का निर्णायक युद्ध न हो सका। इस निर्णय के पूर्व ही अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। अतः उसके उत्तराधिकारी को अवंती राज्य से लौटा देना पड़ा। अजातशत्रु के राज्य में मगध, अंग, वाराणसी और वैशाली के प्रदेश सम्मिलित थे। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 25 वर्ष तक राज्य किया। परंतु बौद्ध साक्ष्य उसका शासनकाल 32 वर्ष का बताते हैं। अजातशत्रु ने शासनकाल में ही दो युग प्रवर्तकों महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु का धर्म ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में अजातशत्रु का झुकाव जैन धर्म की ओर था। इसके कुछ साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पहला, जैन साहित्य में प्रतिहंता के रूप में अजातशत्रु की निंदा नहीं की है। दूसरा, जैन ग्रंथों का उल्लेख है कि अजातशत्रु अपनी पत्नी के साथ महावीर स्वामी के दर्शन के लिए वैशाली गया था और वहां उसने जैन शिक्षाओं तथा जैन भिक्षुओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। हमें यह भी विदित है कि प्रारंभ में अपने चचेरे भाई देवदत्त के कुप्रभाव में अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या द्वेष रखता था। परंतु अपने पिता की हत्या करने के पश्चात उसे भारी पश्चाताप हुआ और उसने महात्मा बुद्ध से अपने अपराधों की क्षमा भी मांगी थी। कुछ साक्ष्यों से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में अजातशत्रु का झुकाव संभवतः बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। पहला, महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध के दाह संस्कार के पश्चात अजातशत्रु ने अपने कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में उन पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। दूसरा, महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति ने अधिवेशन के लिए अजातशत्रु ने व्यवहार की पहाड़ी एक गुहा में एक सभा भवन बनवा दिया। तीसरा, ईस्वीपूर्व द्वितीय शताब्दी के एक भरहूत लेख से प्रकट होता है कि महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की भेंट हुई थी। इस संबंध में उस लेख में अजातशत्रु भगवतो वंदते लिखा हुआ है। परंतु इन समस्त उल्लेखों के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उदयीन पुराणों के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात दर्शक मगध का राजा हुआ। परंतु बौद्ध और जैन साक्ष्य उदयी को अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी बताते हैं। अधिकांश विद्वान इसी मत को स्वीकार करते हैं। फिर आखिर यह दर्शक कौन था? महावंश और दीप वंश में बिंबिसार वंश के अंतिम राजा नागदाशक का उल्लेख है। कुछ विद्वान दर्शक का समीकरण इसी नाग दशक के साथ करते हैं। इसके विरुद्ध डॉक्टर राय चौधरी दर्शक को एक मांडलिक राजा मानते हैं जो बिंबिसार के समय राज्य कर रहा था, परंतु हमने दर्शक को बिंबिसार का पुत्र और सहयोगी माना है। इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। महावंश के अनुसार उदयी भट्ट अर्थात उदाई ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। डॉक्टर जायसवाल इस कथन पर विश्वास नहीं करते। उनका तर्क है कि गार्गी संहिता में उदाई के लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह प्रतिघाती नहीं हो सकता था। परिशिष्ट पर्वन गार्गी संहिता और वायु पुराण के अनुसार उदाई ने नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। साम्राज्य विस्तार के साथ व्यापारिक सैनिक और प्रशासनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त राजधानी की आवश्यकता थी। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन के संगम पर हुई थी। यह प्रत्येक दृष्टि से राजगृह चंपा, जिसे संभवतः अजातशत्रु ने बाद को अपनी राजधानी बनाया था, की अपेक्षा अधिक उपयुक्त था। कौटिल्य के मतानुसार राजधानी नदियों के संगम पर ही होनी चाहिए। उदाई भी अपने पिता के समान साम्राज्यवादी शासक प्रतीत होता है। थविदावली चरित का उल्लेख है कि उसने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और उसके राजा को मार डाला। राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण ली। कालांतर में उस राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण किया और पाटलिपुत्र में जाकर धोखे से सोते हुए उदाई की हत्या कर दी। इस प्रकार उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इस समय मगधराज के मुकाबले में अवंती का राज्य सिर उठाए खड़ा था। कथा सरित सागर और आवश्यक कथानक से प्रकट होता है कि इस समय तक अवंती ने संभवतः वत्स राज्य को भी अपनी छत्र छाया में कर लिया था। उदाई के विरुद्ध उपयुक्त राजकुमार को शरण देकर अवंती के राज्य ने सूचित कर दिया था कि साम्राज्य स्थापना के लिए वह मगध राज्य से लोहा लेने के लिए निरंतर उद्यत है। परंतु उदाई के समय में भी मगध और अवंती का निर्णायक युद्ध न हो सका। पुराणों का कथन है कि उदाई ने 33 वर्ष तक राज्य किया, परंतु उसके विरुद्ध महावंश उसका शासनकाल केवल 16 वर्ष ही बताते हैं। उदाई के उत्तराधिकारी, उदाई के पश्चात मगध के राज सिंहासन पर कौन कौन उत्तराधिकारी बैठे, इस प्रश्न पर बड़ा मतभेद है। सारांशतः भिन्न भिन्न मत निम्न प्रकार है। पहला, पुराण नंदीवर्धन और उसके पश्चात महानंदीनंद, दीपवंश और महावंश, अनिरुद्ध, मुंड और उनके पश्चात नागदायक, ये तीनों क्रम से अपने पिता को मारकर राजा बने थे। दिव्यावदान, मुंड और फिर काकवर्ण, इस परस्पर विरोधी मतों के साथ उदाई के पश्चात मगध का उत्तराधिकारी क्रम असंदिग्ध रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता। शिशुनाग वंश का उदय, दीपवंश और महावंश का कथन है कि पोरो, अमात्य और मंत्रियों ने नागदाशक को सिंहासन से उतार दिया और उसके स्थान पर अमात्य शिशुनाग को राजा बनाया। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि शिशुनाग अंतिम मगध नरेश के शासनकाल में संभवतः बनारस का वायसराय था। अपनी योग्यता के कारण ही संभवतः इसने अन्य अन्य पदाधिकारियों और मंत्रियों को अपने प्रभाव में कर लिया होगा और उन्हीं की सहायता से अपने स्वामी को पदच्युत करवा कर स्वयं सिंहासन पर बैठा होगा। इस प्रकार बिंबिसार वंश का अंत और शिशुनाग वंश का उदय हुआ। पुराणों में शिशुनाग का नाम बिंबिसार के पूर्वाता है, परंतु हम पीछे कह चुके हैं कि यह गलत है। महावंश टीका का कथन है कि शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी राजा तथा एक स्थानीय नगर सोभिनी की संतान था। वैशाली से संबंधित होने के कारण ही शिशुनाग ने उस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात निरंतर राजगृह की अवनति होती गई। अवंती से युद्ध, पुराणों का कथन है कि शिशुनाग प्रद्युतों की शक्ति का विनाश करेगा। प्रद्युत की मृत्यु के पश्चात अवंती के सिंहासन पर कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली राजा न बैठा जो मगध की साम्राज्यवादिता से अपने राज्य की रक्षा कर सकता। संभवतः सिंहासन के लिए होने वाले गृह युद्ध ने भी अवंती राज्य को निर्बल कर दिया था। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि शिशुनाग द्वारा पराजित अवंती राज्य अवंती वर्धन था। इस विजय के पश्चात मगध राज्य उत्तरी भारत में परम शक्तिशाली राज्य बन गया। कालाशोकिया काकवर्ण, शिहली महाकाव्यों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्ष तक राज्य किया और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। पुराण उसका नाम काकवर्ण बताते हैं। दिव्यावदान में भी इसका नाम काकवर्ण मिलता है। प्रायः सभी विद्वानों को एक ही राजा मानते हैं। यह अपने पिता के समय संभवतः काशी नरेश का शासक रह चुका था। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर फिर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया। इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घ समय तक पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहा। शिहली महाकाव्यों के अनुसार कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्धों की द्वितीय संगति हुई। दीपवंश और महावंश के अनुसार कालाशोक ने 28 वर्ष तक राज्य किया था। बाण के हर्षचरित से प्रकट होता है कि काकवर्ण शिशुनाग की नगर के बाहर गले में छुरा भोग कर हत्या कर दी गई थी। अतः स्पष्ट है कि इस राजा का अंत भी किसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हुआ था। काकवर्ण के उत्तराधिकारी बौद्ध साहित्य से प्रकट होता है कि काकवर्ण के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक राज्य किया। इसके पश्चात शिशुनाग वंश की समाप्ति हो गई और नंदवंश का राज्य प्रारंभ हुआ। नंदवंश पुराणों के अनुसार प्रथम नंद राजा महापद्म था और वह शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ में परिशिष्ट परमन के अनुसार वह नापित पिता और वैश्य माता के संतान था। अग्रिमेज का उल्लेख करते हुए कर्टियस लिखता है कि उसका पिता वस्तुतः नापित था और अपनी दैनिक आय से बड़ी कठिनाई के साथ अपनी उदर पूर्ति करता था, परंतु देखने में वह बड़ा सुंदर था, इसलिए वह रानी का प्रेम पात्र बन गया और इस रानी के ऊपर अपने प्रभाव के कारण ही वह उस समय के राजा का विशेष विश्वास पात्र बन गया था। बात को विश्वासघात करके उसने अपने राजा की हत्या कर दी और उसके बाद राजकुमारी के संरक्षक के रूप में काम करने के बहाने उसने वास्तविक राजसत्ता स्वयं हथिया ली। आगे चलकर वह इन राजपुत्रों को मारकर वर्तमान राजा बन बैठा। इस उद्धरण को पढ़ने से प्रकट होता है कि कर्टियस के शब्द में ऑर्गिशन ने जिस राजा का धोखे से वध किया था वह हर्षचरित का काकवर्ण ही था। काकवर्ण के 10 पुत्र ही इस विश्वासघाती उग्रसेन के संरक्षण में कुछ समय तक राज्य करते रहे। तत्पश्चात उग्रसेन ने उस राजकुमारों की भी हत्या करके शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। यह उग्रसेन ने कौन था? हम पहले लिख चुके हैं कि पुराणों के अनुसार नंदवंश का पहला राजा महापद्म था, परंतु महाबोधि वंश में उसका नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्म उग्रसेन ने ही नंदवंश की स्थापना की थी और उसका पुत्र उग्रसेन अर्थात यूनानियों का अग्रमीज अथवा चंद्रमीज सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। महापद्म उग्रसेन भागवत पुराण की टीका का कथन है कि नंदवंश के पास 10 पद्म सेना अर्थात इतनी ही संपत्ति थी, इसी से उनका नाम महापद्म पड़ा। उनके उग्रसेन नाम से भी प्रकट होता है कि उनके पास एक बड़ी विशाल सेना थी। महापद्म एक प्रबल विजेता था। मगध के पूर्व राजाओं ने राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया था, उसे महापद्म नंद ने पूर्ण किया। नंद काल विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। अनेक साक्ष्यों से महापद्म की सफलताओं के उल्लेख मिलते हैं। पुराणों में वह एक छत्र पृथ्वी का राजा अनुलांघन शासन भार्गव के समान सर्वच्छांतक एक राट आदि कहा गया है। इन विशेषणों से प्रकट होता है कि उसने तत्कालीन समस्त राजवंशों से सुनाग इश्वांकु पांचाल काशी हैहा कलिंग अश्मक कुरु मैथिल सूरसेन वितिहोत्र आदि का उन्मूलन कर दिया था। इन राज्यों के नंद द्वारा पराजित होने की बात कली युगराज वृत्तांत में भी लिखी है। जैन परिशिष्ट पर्वन ने भी नंद साम्राज्य की विशालता का पता लगता है। अवंती राज्य तो पहले ही मगध राज्य में मिल गया था। कौशल राज्य भी संभवतः इस समय मगध साम्राज्य के भीतर निमंचित हो गया था। कथा सरिस सागर से प्रकट होता है। अयोध्या में नंद राज्य का शिविर लगा था। हाथी गुम्फा अभिलेख से विदित होता है कि नंद राज्य ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर एक नहर अथवा बांध का निर्माण किया था। उस देश में एक जिनकी मूर्ति ले आया था। इन सब बातों से कलिंग राज्य पर नंद का शासन प्रकट होता है। डॉक्टर राय चौधरी का अनुमान है कि दक्षिणापत का कुछ भाग भी संभवतः नंद साम्राज्य के अंतर्गत था। अपने अनुमान की पुष्टि में उन्होंने गोदावरी के तट पर स्थित नौ नंद तेहरा नामक एक नगर का उल्लेख किया है। थविरावल चरित नंद के एक मंत्री कल्पक का उल्लेख करता है। यह अपनी बुद्धि और अपने प्रपंचों के लिए प्रसिद्ध था। उसने मगध विस्तार में काफी योग दिया था। हम पीछे नंदराज की विशाल सेना का उल्लेख कर चुके हैं। इनकी पुष्टि कर्टियस से भी होती है। उसके अनुसार नंद की सेना में 20,000 अश्वारोही 200,000 पैदल 2,000 रथ और 2,000 हाथी थे। नंदों की अपार धनराशि का उल्लेख पहले किया जा चुका है। वेनसांग भी इसका उल्लेख करता है। महावंश टीका से प्रकट होता है कि संभवतः उसने यह धनराशि छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर भारी भारी कर लगाकर एकत्र की थी। कदाचित अपने शोषण के कारण भी नंदवंश अधार्मिक था। वायु पुराण के अनुसार प्रथम नंदराज महापद्म ने 28 वर्ष तक राज्य किया, परंतु मत्स्य पुराण में उसका शासनकाल 88 वर्ष का दिया है। ऐसा प्रकट होता है कि उसमें अष्टाविंशति के स्थान पर अष्टाशीति गलती से लिख गया है। तारानाथ के अनुसार नंदराज ने 29 वर्ष तक राज्य किया, परंतु सिंहली महाकाव्य समस्त नंद राजाओं के शासनकाल को 22 वर्ष का बताते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद के पश्चात उसके 8 पुत्रों ने 12 वर्ष तक भी राज्य किया। महाबोधि वंश के अनुसार अंतिम नंद राजा का नाम धन था। यही संभवतः यूनानियों का अग्रमीज अर्थात अग्रसैन्य था। इसका विनाश चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किया था।